जी बिस्मिल्लाह कीजिए, जी बिस्मिल्लाह कीजिए।
कौन करने लगा, मैं करूं?
जी आप
सर,
करें।
मैं आज आपसे सबसे बड़े बात ये पूछनी है कि शोर की कमजोरी को कैसे ज्यादा से ज्यादा कम किया, उसको खत्म किया जा सकता है।
बहुत ही बुनियादी और बहुत ही खूबसूरत सवाल है और बहुत ही जरूरी सवाल है। यानी देखे ना, हम शऊरी निजाम में रहते हैं। बाशऊर होने के लिए क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा जानना है। जितना हम जानते रहेंगे, हमारे शऊर में वो सारे इन्फॉर्मेशन जो हैं, इत्तलात जो हैं, इल्म जो है, वो एक तरतीब के साथ मुज्तमा होता रहेगा। तो इसे कहते हैं शऊर की तवानाई। ठीक है, रूहानियत में शऊर को इस तरह से तवाना किया जाता है कि वो लाशऊर से आने वाली इत्तलात को वसूल करे। दुनियावी निजाम में शऊर को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो माहौल से, दुनिया से आने वाली इत्तलात को अच्छी तरह वसूल करे और समझे। गौर करें क्या बता गया। बात ये अर्ज कर रहा हूं कि शऊर की तवानाई के दो मफहूम हुए। शऊर की तवानाई का एक मफहूम ये है कि हमें मादी जोन में, दुनिया में रहते हुए अपने शऊर को डेवलप करना है ताकि हम दुनिया पे हुकूमत कर सकें। लेकिन रूहानी तौर पे इसका मतलब ये बना कि हमें अपने शऊर को इतना तवाना करना है कि हम लाशऊर से आने वाली इत्तलात को पूरी तरह वसूल कर सकें। ये जब जूं जूं शऊर तवाना होगा और ध्यान अल्लाह की तरफ रहेगा तो क्या होगा? देखे ना, आपका ध्यान अपनी किताब में है, आप किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दरवाजे पे दस्तक हुई आपको पता ही नहीं चला। लेकिन अगर ध्यान दरवाजे की तरफ लगा होगा तो वहां जरा सी भी आहट होगी आपको पता चल जाएगा। क्या मतलब हुआ? सारा चक्कर हुआ ध्यान का, किसका? तवज्जो का। अगर हमारी तवज्जो सेल्फ डेवलपमेंट पे है, खुद को डेवलप करने पे लगी हुई है, तो आप खुद को डेवलप करने के लिए क्या करेंगे? सवाल पूछेंगे। और करें, जब आप सवाल अपने आप से पूछेंगे और आपके अंदर से जवाब आना शुरू हो जाएगा तो क्या हुआ? एक तो ये ना कि आप दूसरों से सवाल पूछें। अब ये जो हम किताबें पढ़ते हैं, इसके पीछे क्या है कि हमें तजस्सुस है कि दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। हम उसको जानने के लिए किताब पढ़ते हैं, कहीं नॉवेल की सूरत में, कहीं किताब की सूरत में, कहीं दर्सी किताब की सूरत में। ठीक हो गया। अब जब हम अपने शऊरी निजाम को इम्प्रूव करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, क्या करेंगे? हम अपने अंदर से आने वाले सवालों के जवाब खुद खोजेंगे। इस बात को कुरान ने कैसे कहा कि गौर करो, फिक्र करो, तदब्बर करो, ताकुल से काम लो, तज़क्कर करो, यानी जिक्र करो, कहा या नहीं? ये सब क्या हुआ? शऊर को तवाना करने के तरीके हुए। अब मैं एक जुमले में इसका जवाब दे सकता था कि भाई शऊर को तवाना करने के लिए गौर व फिक्र ही असल तरीका है, लेकिन मैंने ये वजाहत इसलिए की कि आपके जहन में आ जाए कि सवाल आना चाहिए मेरे जहन में, ताकि मैं उसका जवाब खुद अपने अंदर से खोज सकूं। जब हम किसी सवाल का जवाब अपने इनर में खोजने बैठ जाते हैं तो क्या कर रहे हैं? गोया ये शऊर की तवानाई का सामान कर रहे हैं। जब आप ज्यादा सवालों के जवाब जानते होंगे तो क्या कहेंगे? कि आपका शऊर زیادہ مرتب ہے اور زیادہ توانا ہے، ہاں یا نہیں؟ بات واضح ہو گئی؟
نہیں، ایک اور بات ہے کہ روحانی علاج میں بابا جی نے لکھا ہوا ہے کہ اپنے شعور کو کیسے آپ اسٹرانگ کر سکتے ہیں، شعوری کمزوری کو کیسے دور کر سکتے ہیں. تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے تو شعور واقعی بہت کمزور ہیں، تو ہمیں اس سے بھی مدد لینی چاہیے.
بالکل، وہ بہت مددگار ہے، وہ جو الرزاق و امانویل، یہ جو اس میں تعویذ دیا گیا ہے، وہ اصل میں اسی چیز کی ایک روحانی امداد ہے. کس چیز کی؟ کہ آپ کا ذہن اس طرف متوجہ ہو جائے، جو باتیں میں نے عرض کی. کیا؟ کہ غور و فکر کی طرف متوجہ ہو جائے. نہیں 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 یہ غلط فہمی ہے، بات کو سمجھیں. دیکھیں، آپ کے بجلی کا کرنٹ آ رہا ہے 220 وولٹ کا، ٹھیک ہے؟ آگے آپ جو آلہ استعمال کر رہے ہیں وہ 6 وولٹ پہ چل رہے ہیں. آپ 6 وولٹ کو لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تو بھگ سے اڑ جائے گا. آپ کو 220 وولٹ کے کرنٹ کے لیے 220 وولٹ کا پنکھا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب 12 وولٹ کے پنکھے بھی ملتے ہیں، بیٹری آپریٹڈ چھوٹے. اب اگر ڈائریکٹ وہ 12 وولٹ کو آپ 220 وولٹ پہ ڈال دیں گے، کیا ہوگا؟ وہ جل جائے گا، اڑ جائے گا. تو کیا کہیں گے اس کو؟ کہ بھی اس کی ذرا توانا کرو، اس کا شعور توانا کرو، یعنی اس کی سکت، اس کی کیپیسیٹر لگا کر اس کی کیپیسٹی کو انکریز کرو. اب کلیئر ہو گئی بات؟
میں تو آگے اس کا شعور کا شروع کر دوں گی، روحانی علاج مدد
جی ہاں وہ بھی کریں. اور ساتھ میں جو بات میں نے عرض کی، اس کو ذرا توجہ دیجئے گا. توجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے انر میں سوال کو ابھرنے دینا ہے. اور دیکھیں نا، چھوٹے بچے کیسے سیکھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، ہاں یا نہیں؟ اب ہمارے کیا کہتے ہیں روحانیت میں، کہ یہ بچپن کی طرف کے سفر کا دوسرا نام روحانیت ہے. یعنی بچے کی طرز فکر اپنائیں، ہر چیز کو کیوریوسٹی کے ساتھ، تجسس کے ساتھ، انکوئزیٹیونیس کے ساتھ توجہ دیں. اپنے آپ سے پوچھیں یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے. دیکھیں نا، میں کیا ہوں، میں کیوں ہوں، یہ اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کیا ہے، اللہ کیوں ہے، یہ سوال ہیں یا نہیں؟ جوں جوں آپ ان سوالوں کے جواب اپنے اندر سے دریافت کرتے چلے جائیں گے، آپ کا شعور مرتب بھی ہوتا جائے گا اور توانا بھی ہوتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اصل چیز غور و فکر ہے، باقی یہ تعویذ دھاگوں سے روحانی مدد ملتی ہے، یعنی وہ آپ کے شعور کو اس طرف مائل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی، اور کوئی سوال؟
جی سر، میرا سوال تھا
ارشاد،
بھروسہ اور
مجھے دوسروں سے توقعات ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے توقع ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے اپنی جائیداد میں حصہ دے گا. میرا بھروسہ یہ ہے کہ باپ سے امید ہے، آسرا ہے کہ وہ مجھے اپنی کمائی میں سے حصہ دیتا رہے گا. یہ سب کیا ہوا؟ بھروسہ. بیوی کو خامن سے کیا ہے؟ بھروسہ کہ بھائی وہ گھر کا خرچہ پورا کرے گا. غور کریں، یہ بات کلیئر ہو گئی؟ بھروسہ کلیئر ہو گیا کہ نہیں؟
جی
यानी डिपेंडेंसी को भरोसा कहा है। जब हम किसी चीज पे डिपेंड करते हैं तो इसको भरोसा कहा जाता है। जब ये भरोसा अल्लाह पे आ गया तो इसको तवक्कल कहेंगे। यानी आपके जहन में है कि हर अल्लाह पूरी करेगा, तो ये तवक्कल हुआ। ठीक है। और जब अल्लाह पे भी भरोसा ना रहे कि भी अल्लाह चाहे करे चाहे ना करे, ये दर्जा जो है ये है इस्तग़ना का। दोबारा सुने, ये बड़ी गहरी बात आपने पूछी है। जब मैंने ये सवाल मुर्शिद करीम से किया था तो मेरे अल्फाज ये थे कि किसान मुट्ठी में गंदम भर के मिट्टी में फेंक देता है, वो इस भरोसे पे मिट्टी में फेंकता है कि इसमें से पौधा उगेगा। और अल्लाह करता है कि उस पौधे में यानी उस दाने में से पौधा निकलता है और एक दाने में सैकड़ों दाने लगते हैं। एक दाने के बदले में सैकड़ों, मतलब एक किलो माल डाला तो सैकड़ों किलो गंदम निकलती है। हाँ या नहीं? तो मेरे जहन में था कि शायद ये इस्तग़ना है। तो मैंने हजूर मुर्शिद करीम से तस्दीक के लिए गौर व फिक्र करते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा, तो मैंने सवाल पूछा कि क्या ये इस्तग़ना है? तो हजूर मुर्शिद करीम ने फरमाया नहीं, ये तवक्कल है, यानी उसे अल्लाह पे भरोसा है कि गंदम उगेगी। तो मैंने हैरान होके पूछा कि जी तो फिर इस्तग़ना क्या हुआ? हजूर मुर्शिद करीम तकिए पे नीम दराज थे, तो उन्होंने अपना दाया हाथ ऐसे कोहनी के बल रखा हुआ था, तो हाथ को ऊंचा किया और डुगडुगी की अंदाज में नफी में दाएं बाएं घुमा दिया जैसे डुगडुगी बजाते, और जुमला कहा हाथ को यूं हिलाते हुए, क्या कहा? अल्लाह चाहे करे चाहे ना करे, ये इस्तग़ना। मतलब है कि आपने अल्लाह पे छोड़ दिया, अब आ जाए जरा इस्तग़ना पे। ये बात क्लियर हो गई यहां तक? अब लफ्ज इस्तग़ना की जरा बनावट देखें। इस्तग़ना का लफ्ज गना से है, गनायत कहते हैं नगमे को, नगमा सुना है आपने
जी।
क्या होता है उसमें नगमे में क्या होता है? सुर होते हैं, यानी आवाजें एक दूसरे के साथ अगर बेसुरी हों, सुर ना मिल रहे हों, तो नगमा कहलाएगा वो? जब आपका जहन अल्लाह के जहन के साथ हम आहंग हो गया, क्या हुआ? जब आपका जहन अल्लाह के जहन के साथ हम आहंग हो गया, इस कैफियत को इस्तग़ना कहते हैं। अल्लाह चाहे करे चाहे ना करे, आप दोनों हालतों में खुश हैं। वाज़े हो गया भरोसा तवक्कल और इस्तग़ना में फर्क कितना अजीम, मतलब कितनी वजाहत हो गई और कितना वाज़े हो गया। आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह चाहे करे चाहे ना करे, मालिक है, ये इस्तग़ना है। लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखना कि इंशाअल्लाह अल्लाह कर देगा, ये तवक्कल है। लोगों पे तवक्कल नहीं होता, लोगों पे भरोसा होता है।
जी
ठीक हो गया
जी सर, थैंक यू सर। एक बार मेरे ब्रेन में आती है जब कायनात को देखती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है, हर चीज इतनी परफेक्ट मुझे नजर आती है, इतनी परफेक्ट नजर आती है।
है ही परफेक्ट, है ही परफेक्ट, मैं नहीं कह रहा, ये कुरान ने कहा है। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बे करीम का इरशाद है कि बार बार नजर करो, बार बार देखो, तुम्हारी नजर थकी हुई दरमांदा वापस पलट आएगी, तुम्हें इसमें कोई नुक्स नजर नहीं आएगा।
नहीं है, बड़ा मजा आता है मुझे देखो करे लमे में वो तू शॉप पे हर चीज से मुतमईन हूं, हर चीज से मुतमईन हूं।
अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का इनाम है। क्या है
इनाम?
अल्लाह का इनाम
चीज ना, शुक्रिया हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो अपनी नेचर अगर इंसान की ऐसी हो तो मगर उसने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई कि हम लोग ना शुक्रिया हो, हर चीज शुक्र अदा करने वाली है।
बेशक देखे ना अल्लाह का पूरा निजाम परफेक्शन की इंतहा है, हाँ या नहीं? इसीलिए तो अल्लाह कहता है कि मेरे निजाम पे गौर करो, मेरी बातों पे गौर करो तो तुम भी परफेक्ट होते चले जाओगे। देखें अब समझ आया कि गौर व फिक्र क्यों जरूरी है। आप अल्लाह की जिस बात पे भी गौर करेंगे आपका जहन एक ही नतीजे पे पहुंचेगा कि यार इससे बेहतर नहीं हो सकता था,
नहीं
हो सकता। जब आपको यह एहसास होगा कि इससे बेहतर नहीं हो सकता था तो उस बेहतरीन काम करने वाले को आप सराहेंगे या नहीं सराहेंगे? इस सराहने को ही तो अलहम्द कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तेरी मखलूक की खिदमत करते हैं, तेरे साथ तजारत कर ले, बस यही हमारा सबसे बड़ा वो है कि हमें इसमें तू कामयाब कर दे।
आमीन 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 इलाही आमीन।
सर मेरा एक और सवाल है।
इरशाद
सर, हम अक्सर दुआओं में पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियां हम पे अपना रंग चढ़ा दे। सर इसका जरा वजाहत फरमा दे, सिकवा क्या है? ये पहले स्पर में आते हैं, पहले
है हमने है। इसका तर्जमा कर दिया रंग, सिबगा का तर्जमा कर दिया रंग। अल्लाह ने नहीं 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 नहीं
नहीं
अब मेरी यार सुन लीजिए, अरबी में रंग के लिए लफ्ज है अलवाना, सिबगा का मतलब है असर लेना, सिबगा का मतलब है असर लेना। मसलन आप बच्चे को कहते हैं इस पे गली के बच्चों का रंग चढ़ गया, कहते हैं अब ये जुमला जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? हमारा मतलब होता है हाँ असर लिया हुआ इसने, क्या बच्चे ने गली मोहल्ले के बच्चों का असर कबूल कर लिया, तो हम क्या कहते हैं इसका उनका रंग इस पे चढ़ गया, यानी ये उन जैसी हरकतें करता है, उन जैसी हरकतें करने को हम क्या कह रहे हैं रंग चढ़ना। और करें अब अल्लाह रब्बे करीम कहता है सिबगतुल्लाह, सिबगतुल्लाह अल्लाह का रंग, वो मन आहसाना सिबगतुल्लाह, और अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसका है? यानी अगर आपने असर लेना है तो आप अल्लाह का असर लें, अल्लाह का असर लेने से ज्यादा अच्छी बात और कौन सी है? अब अल्लाह रब्बे करीम का ज़र्फ देखें, मेरे जैसे हम जैसे मतलब है गुस्ताख और क्या कहूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, बुरे लोग जो हैं अल्लाह उनको भी रिज़क दे रहा है, उनको भी परवान चढ़ा रहा है। कतन बुरा नहीं मना रहा, जो लोग उसको बुरा कह रहे हैं उनको भी खिला रहा है।
क्या फायदा ले रहे हैं आपसे और कितनी दुआएं देते हैं आपको?
मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बे करीम का ज़र्फ देखें, ज़र्फ यानी अल्लाह रब्बे करीम। अब हमारा ज़र्फ क्या है? उसने ये क्यों कहा, उसने ये क्यों नहीं कहा, उसने ये क्यों किया, उसने ये क्यों नहीं किया, हम इन चक्रों में पड़े हुए। तो क्या मतलब हुआ कि जब हम अल्लाह का रंग कबूल करेंगे तो अल्लाह जैसी हरकतें भी करेंगे ना, यानी वो हरकतें करेंगे जो अल्लाह को पसंद हैं। अल्लाह को मुआफ करना पसंद है, हमसे मुआफी नहीं होता। कोई गलत कर रहा है, हम सारा वक्त उसी का तज़करा करते हैं। अल्लाह को नहीं दिख रहा, अल्लाह को भी दिखता है, अल्लाह तो हमसे ज्यादा देखता है, लेकिन अल्लाह तो बुरा नहीं मनाता, अल्लाह उसका रिजक नहीं रोकता, अल्लाह उसकी सेहत में कोई खलल नहीं डालता। गौर करें तो क्या हमारे अंदर ये ज़र्फ है? क्या हम में ये अल्लाह का रंग चढ़ गया? अब वाज़े हो गया कि लफ्ज रंग को सिबगतुल्लाह का असल मतलब है अल्लाह की बात का असर लेना और फिर उस जैसा करना। सिर्फ
क्रिश्चियन ब्लू बाथरूम में डालते हैं बच्चे को, ये जी सिबगतुल्लाह, ये अल्लाह
का, ये नहीं 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 नहीं, ये बात ही कुछ और है। मैं मादी रंगों की तो बात ही नहीं कर रहा। मैंने अर्ज किया कि उसके लिए अरबी में लफ्ज है अलवाना, मुख्तलिफुल अलवाना। अल्लाह कहता है मैंने चीजों को इख्तलाफ रंग से पैदा किया, यानी रंगों की लहरें होती हैं, वो एक और निज़ाम है। यहाँ पे मैंने मिसाल दी कि बच्चे पे सोसाइटी का रंग चढ़ गया, तो यहाँ पे लफ्ज रंग मुराद है? तो जवाब है नहीं। इसी तरह सिबगा का मतलब रंग नहीं है, सिबगा का मतलब है असर लेना। अब ये जो आयत करीमा है सिबगतुल्लाह है, वह मन आहसाना सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग हमने तर्जमा कर दिया भाई, अल्लाह का असर लेना, वह मन आहसाना सिबगतुल्लाह, और अल्लाह के असर से ले बेहतर और कौन सा असर हो सकता है? और करें, अल्लाह ने पूरी जामे और मुकम्मल बात इरशाद फरमाई है। हमने चूंकि तर्जमे में गलती की, लिहाजा समझने में कोताही हो रही है। तो ये बात वाज़े हो गई जी?
नहीं सर,
बहुत शुक्रिया जी।
सर एक में मेरे दिमाग में तो आजकल यही बात आई हुई है, हर वक्त में कहती हूँ लमिया हमारे सारे मौज में हराम को आप अपने हुक्म से बंद कर दें, जहाँ जहाँ हराम आ रहा है लोगों को नहीं पता, हमें नहीं पता, हराम के सारे दरवाजे बंद कर दें।
चले आपने अल्लाह से कह दिया, अगर अल्लाह चाहेगा कर देगा, नहीं चाहेगा नहीं करेगा। बात यह है कि आपके मांगने और कहने और सुनने के बाद क्या अल्लाह करना चाहता है? अल्लाह ने अगर मना करना होता, अल्लाह ने अगर अल्लाह ने हुक्मन मना करना होता तो आपको जजा और सजा क्यों? गौर करें, इसमें बारीकी है, इस पे नुक्ते को समझें। अल्लाह ने मना कर दिया और न छोड़ आपकी मर्जी पे दिया। अब सूद अल्लाह ने हराम कहा, पांच आयात तसलसल के साथ सूरह बकरा में आती हैं, ठीक है? हुरमत रिबा, हुरमर रिबा व हलल बै, अल्लाह कहता है मैंने हराम कर दिया रिबा को और हलाल करार दे दिया बै को, खरीदो फरोख्त को। फिर कहा खताबात शैतान है ये, फिर कहा कि भई सदक व यमहकुल्लाह रिबा, अल्लाह रिबा को रगड़ के मिटा देगा। پھر فرمایا کہ بے حرب من اللہ و رسولی، کہ تم حالت جنگ میں ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. غور کریں لگاتار. اور پھر کہا کہ صدقات جو ہیں ان کو اللہ بڑھاتا ہے اور ربا کو ختم کرتا ہے. یا محق اللہ، کیا مطلب ہوا ہم باز آ گئے ہیں؟
شکر الحمدللہ.
او ہو، آپ اپنی ذاتی بات نہ کریں. یہاں گلی گلی محلے محلے بینک کھلے ہوئے کہ نہیں؟ ہر بڑے بازار میں بینک ہے یا نہیں؟ سود کا کاروبار ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک طالبان لیڈر سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ تم میوزک کی دکان میں تو بم پھاڑ دیتے ہو، کبھی کسی بینک میں کیوں نہیں بم پھاڑا؟
ہاں صحیح بات ہے.
غور کریں.
کیا کہنے لگا؟
بس آئیں بائیں شائیں. ایک دفعہ مولانا ابراہیم ایک مذاکرے میں، یہ سینیٹر تھے جماعت اسلامی کی طرف سے، تو وہ پریس کانفرنس میں وہاں پہ ایک نشست تھی، اس نشست میں انہوں نے مجھے بھی مدعو کر لیا. تو میں نے سینیٹر صاحب سے سوال پوچھا کہ آپ جماعت اسلامی، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور سود کے نظام پہ میں نے آپ کی کوئی آواز نہیں سنی. کیا مطلب؟ انہوں نے آگے سے، نہیں جی ہم نے تو کئی جلوس نکال لے. تو ہم نے، میں نے کہا جلوس نکالنا ہے آپ کا اپنا اکاؤنٹ بینکوں میں؟ میری بہن بات، میری بہن بات کو توجہ سے سنیں. بات یہ ہے کہ آپ بینک کو سپورٹ تو کر رہے ہیں نا، اتنا جمع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ او ہو، میری بات دیکھیں، جب آپ روحانیت کے کلاس میں روحانیت پہ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک جملہ سنا دیتا ہوں. میری بات سنیں، میں آپ کو ایک جملہ سنا دیتا ہوں، میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں. شریعت میں 40 پہ 1 روپے زکات ہے، اور طریقت میں 40 پہ 41 روپے زکات ہے. کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے شریعت میں آپ 40 روپے جمع کر کے پورا ایک سال رکھتے ہیں تو جا کے 1 روپیہ زکات دیتے ہیں، ہاں یا نہیں؟ طریقت میں توکل کی وجہ سے آپ جمع نہیں کرتے، لہذا اگر جمع کرتے ہیں تو آپ کو سزا کے طور پہ 40 کے ساتھ 1 روپیہ اور بھی زائد دینا پڑتا ہے اللہ کی راہ میں. میں پلیز اس موضوع پہ نہیں، اس سے مزید نہیں کہہ سکتا. جو بات میں نے کہنی تھی وہ کہہ دی ہے. اب جو کر رہے ہیں وہ لوگ سارے ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس اگر آپ نہیں کر رہے تو اللہ خوش رکھے آپ کو، اگر کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ باز آ جائیں. بس بات ختم. چھوڑ دیجئے نا، اس بات کو چھوڑ دیجئے. میں نے آپ کو ایک مثال عرض کی، میں نے ایک مثال عرض کی. بات ہو رہی ہے اللہ کی بات کو ماننے کی. ہم کتنا مانتے ہیں، میں نے وہ بات کی طرف توجہ دلائی. باقی جو بھی لوگ کر رہے ہیں اللہ تو نہیں منع کر رہا ہے. اللہ نے منع کیا، بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کیوں نہیں ٹھیک کر دیتا، تو اللہ نے تو منع کر دیا نا. اگر آپ نے عمل کیا تو اپنا بھلا کیا، اگر عمل نہیں کیا تو کس کا برا کیا؟ शाबाश। तो अल्लाह को इससे कोई गरज नहीं है कि आप अपना भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। वो आपकी दुआ अपनी जगह सर आंखों पे कह देने से अल्लाह बचाने को इंस्पायर करता है ना। साफ कह दिया कुरान में, उससे ज्यादा क्या करे अल्लाह। मना कर दिया उसके बाद आप पे छोड़ दिया। आपने यहूदियों को फॉलो किया, अल्लाह को फॉलो नहीं किया। ये बैंकिंग का सिस्टम किसने ईजाद किया? यहूदियों ने। हजरत मूसा की तालीमात शरीयत मूसवी में भी सूद हराम है, पता है ये बात आप? मुझे नहीं पता इस बात का, नहीं मुझे नहीं इलम जी, मुझे इलम नहीं है। मैं आपको जो बात सुना रहा हूँ आप वो सुन लेना। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि शरीयत मूसवी में, यानी हजरत मूसा की शरीयत में भी सूद हराम था और हराम था, लेकिन यहूदियों ने क्या तहरीफ की कि सूद देना नहीं है, सूद ले सकते हैं। गौर करें, सिर्फ इतनी सी तब्दीली की कि यहूदी सूद देंगे नहीं, ले सकते हैं। नतीजा उन्होंने सारे बैंक बना दिए, आपको तहफ्फुज़ के खातर बैंकों ने लालच दिया कि जी यहाँ महफूज है। क्या महफूज है? हैं, बैंक में फ्रॉड हो जाए तो आप महफूज हैं? मैं अर्ज करता हूँ ये तो दुनिया ने एक निजाम बना लिया ना। भाई पहले भी तो देखें, बात यह है कि इस निजाम को बेहतर सूद के बगैर भी तो चलाया जा सकता है ना। लेकिन आप मुसर हैं तो ठीक है, मैं आपको एक बात सुना देता हूँ, सुन लीजिए। जब मैंने गौर किया कि सूद क्यों हराम है, अब सूद पे बात हो रही है, तो मेरे जहन में अल्लाह रब्बे करीम ने करम किया, एक बात आई समझ में आ गई। खैर जी, मैं वो तकरीर करने मतलब है कहीं पहुंच गया, वहां मैंने जाके तकरीर की, वहां बैंकों के लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक बैंकर ने मुझसे राबता किया, मुझे कराची बुलाया। मैं कराची गया, मुझे बड़े शानदार होटल में डिनर पे लेके गए वो, ठीक है, उनकी पूरी टीम। उन्होंने एक सवाल किया कि सूद की जो हुर्मत का आप तसव्वुर लेकर आए हैं, ये आपके अंदाजे में कब तक राइज हो जाएगा? सवाल देखें। मैंने ये कहा, मैंने ये अर्ज किया कि देखें असल में सूद क्या है। मैंने सूद की असल डेफिनेशन उनको अर्ज की कि सूद वक्त बेचना है। देखे ना, आप लाख रुपए देते हैं, कहते हैं मैं लाख रुपए के एवज 10,000 रुपए लूंगा एक महीने के, या 10 महीनों के, या साल के, ठीक है। आपने वो 10,000 लिया तो लाख रुपया भी तो आप ही का है ना। तो आप असल में क्या बेच रहे हैं? आप वक्त बेच रहे हैं। और वक्त कौन है? ला तबस्सुद दहर फाइनल लाह दहर, जमाना ही तो अल्लाह है। हैं, जमाने को बुरा ना कहो, क्योंकि अल्लाह ही जमाना है या जमाना ही अल्लाह है। क्या मतलब हुआ? आप अल्लाह को बेच रहे हैं, इसलिए अल्लाह ने मना किया कि भाई मेरी, मुझे मत बेचो, ठीक है। ये इसकी हिकमत है। खैर, तो उन्होंने सवाल पूछा मुझसे कि कब तक ये जारी हो जाएगा, कब तक लोग आप समझते हैं कि इतने बाशऊर हो जाएंगे कि वो सूद से बाज आ जाएंगे। मैंने उनसे कहा, जी हाँ, तो मैंने उनसे अर्ज किया कि जो मैं हालात देख रहा हूँ, अगले 100 साल तक भी लोग बाशऊर नहीं हो सकेंगे। उन्होंने इतने इत्मीनान का सांस लिया कह रहे भाई ये बस बातें हैं, करते रहो। अगर उन्हें ये मैं कह देता कि ये जल्द ही नाफिज हो जाएगा और आपका सारा निजाम बंद हो जाएगा, तो वो अगले दिन मुझे कत्ल करवा देते,
वो भी मुसीबत हो जाएगी।
बात समझ आ गई आपको? देखें शैतान का निजाम, शैतान का निजाम। हमने अपनाया हुआ है और हम शैतान की गोद में बैठे हुए हैं।
हमारा तो ये जितना हम देते हैं ना, वही बार चला जाता है, वही हमें वापस मिलता है। बिल्कुल कोई प्रॉफिट, कोई कुछ नहीं होता। ये विलास बैंकारी जो है ना, वो है ये, वो क्योंकि बिजनेस करना होता है।
जी हाँ, बाज लोगों ने इसका हल ये रखा है कि वो बैंकों को इस्तेमाल करते हैं, उनकी सर्विस चार्जेस अदा करते हैं और करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं।
ये करंट हमारे सारे करंट अकाउंट।
हाँ जी,
और मैं बार बार अपने बच्चे को पूछती हूँ, कोई ऐसा काम तो नहीं किया?
हाँ सही है, लेकिन हम जिस निजाम में रह रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है, या देना तो जरूर पड़ता है, ठीक है, बास जगह लेना पड़ता है। अब उसका हल सुन लीजिए, जहाँ लेना और देना पड़े वहाँ पे हालत इस्तरार की एक आयत है। हालत इस्तरार यानी के बेचारगी में, बेबसी में अगर आप कोई काम करना पड़ रहा है, तो वो मजबूरी के तहत अगर आप कर रहे हैं, तो अल्लाह वास्ते अल्लाह माफ करने वाला है। ठीक हो गया? आप जो करती हैं उसे रहने दे, सवाल पूछें। वो जो आप जो करते हैं वो करते रहे, मैंने कहा कि अगला सवाल पूछें।
सही बात, सही बात। अच्छा,
चले कोई बात नहीं जी। और कोई सवाल है किसी का? वालेकुम अस्सलाम जी।
सर वो सवाल है नंबर 22 से कि हर फर्द को इसके अंदर बहते हुए इल्म आ गए कि समंदर से रोशनाश कराएंगे और खुद भी अपनी रूहानी सलाहियत से बहरावर होकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखुर होंगे। सर ये इल्म आगाही जो हर फर्द के अंदर मौजूद है?
जी हाँ जी। आपको पता है ना कि आप कौन है? आपको पता है ना कि आप एक खातून है? आपको मालूम है कि आप एक मतलब इस एज में हैं, इतने बच्चों की अम्मा हैं, इतने बच्चों के मतलब फलां की बीवी हैं, वगैरह वगैरह, ये सब बातें आपके इलम में हैं या नहीं?
जी सर जी।
तो ये सब क्या हुआ? इल्म और इरफानी तो हुआ। आपको मालूम है ना कि आप पाकिस्तान में रहते हैं? आपको मालूम है कि हम दुनिया में रहते हैं? आपको मालूम है कि हम मखलूक हैं अल्लाह की? ये सब इल्म और इरफान है। आपको अंदर ये एहसास है कि मैं अल्लाह की मखलूक हूँ, अल्लाह मेरा खालिक है, अल्लाह मेरा मालिक है, अल्लाह मेरा परवरदिगार है? ये भी तो इल्म है ना। मैं इन बच्चों की अम्मा हूँ, ये इल्म है? ये इल्म नहीं है कि मैं अल्लाह की मखलूक, मेरे जिम्मे अल्लाह की तरफ से कुछ फराइज आयद हुए हुए। इन चीजों का शऊर क्यों नहीं है? ये जो इल्म ना होना है, उस इल्म को हासिल करने की दावत दे रहा है कुरान। इसी यानी दावत को आगे सलासल, जितने रूहानी सलासल है वो लेके चढ़े हुए कि अल्लाह की बात को समझो, अल्लाह की बात को समझो, अल्लाह की बात को समझो। मखलूक होने के नाते हम पे एक ही तो फर्ज है, क्या? कि अल्लाह की बात को समझ लें। अगर हमने अल्लाह की बात समझ ली तो किसका भला करेंगे, अल्लाह का या अपना?
अपना।
शाबाश, बस इतनी सी बात है। अल्लाह की बात को समझ के अगर अमल करेंगे तो किसका भला करेंगे?
अपना भला।
तो हम क्या जाहिल हैं कि हमें पता है कि इस बात में हमारा भला, फिर भी हमसे नहीं हो रही? हम अल्लाह की बात ही नहीं समझ रहे, हम अल्लाह की बात पे अमल कर ही नहीं रहे, किसका बुरा कर रहे हैं?
अपना।
हर सूरत में अपना ही है। इस अपनाइयत ने ही तो मरवाया हुआ है। ठीक हो गया? वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। और कोई सवाल? और कोई बात है? चले, नहीं आ रही जेन में तो मेरा ख्याल काफी है। अल्लाह खुश रखे, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी आप ये नया ज्वाइन किया इन्होंने, अगर कोई सवाल पूछना है तो फरमाइए। नहीं नहीं, ये एक अभी डॉक्टर शाहिदा ने ज्वाइन किया था, उन्होंने तो ड्रॉप हो गई है मेरा ख्याल है। चले फिर रहती है बात, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।